अनुभव भी बड़ा खजाना है, है ना? आप सभी जो बैठे हैं, किसी ने तो साकार में बाबा को नहीं देखा है, मम्मा को नहीं देखा है, शायद कईयों ने दादियों को भी नहीं देखा है। हमारा परम सौभाग्य रहा 53 में, आपको पता है कि बाबा कराची से आबू आए 15 में, मालूम है 50 में आबू आए, 51 या 52 में बहनें सेवा पर निकली, 53 में दिल्ली में एक सेंटर खुला। और हमारे माता जी को खोज थी कि दिल्ली में कोई सत्संग नहीं है, हम जहां रहते थे वहां तो रोज सत्संग में जाते थे, यहाँ कोई सत्संग नहीं है, कोई बीमार था उनको देखने के लिए आई थी दिल्ली में। हॉस्पिटल में एक नर्स ने कहा आपको मैं ले चलूंगी सत्संग में, तो वो सेंटर पर लेकर आई। वो वहां जाती थी, रोज क्लास करती थी नर्स। जब सेंटर पर आए, उनको बिठा दिया, बैठो। कुछ ज्ञान की बातें सुनाई, आत्मा के गुण याद करा दिए, फिर कहा बैठकर इसको थोड़ा चिंतन करो। बहुत उनको अच्छा साक्षात्कार हुआ, अच्छा अनुभव हुआ। अब उन्होंने सोचा कि अब हम रोज कैसे जाएं, वो दूर रहते थे, तो जिस गली में सेंटर था उसी गली में किराए का मकान खोज लिया, एक फ्लैट मिल गया, उसी दिन शिफ्ट कर गए कि हमको तो रोज जाना है। और वहां क्लास होती थी सुबह 4 बजे, पूरे 4 बजे अगर आप पहुंचे तो बैठने की जगह नहीं, हॉल के बाहर बैठना पड़ता था। 3 बजे से सब पहुंच जाते थे, 4 बजे मुरली शुरू। पहला दिन गई, दूसरे दिन हम मेरे को साथ में ले गई, उनको एक दादी अलग से क्लास कराया, और एक कमलमणि दादी थी दिल्ली में, और उन्होंने मुझे हॉल में ले गई। अब देखो आपके पास भी बच्चे आते हैं, इतना टाइम देते हैं बच्चों को। मैं अकेली थी, 6 बरस की थी मैं, वो मुझे हॉल में ले गई, बोला चलो तुमको गाना सुनाते हैं। ग्रामोफोन पर एक गीत लगाया, गीत पूरा होने के बाद उन्होंने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के 7 गुण बार बार रिपीट करवाए, बार बार रिपीट करवाए, याद करा दिया। शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, 30-40 बार रिपीट करवाया। बोले याद हो गया? मैं क्या, हाँ हो गया। कहा सुनाओ, सुना दिया, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, पक्का करा दिया। फिर उन्होंने कहा कल फिर आना, मैं तुमको डांस सिखाऊंगी, वो दादी हमको बोली। और ये जो अभी तुम याद की हो ना, इसको अभी से चिंतन शुरू कर दो, कल आने तक एक मिनट इसको छोड़ना नहीं, रिपीट करती रहना करती रहना, जैसे सिमरन करते हैं ना, करती रहना। ठीक है, तो हम ऐसे ही शुरू कर दिया और वैसे ही सिमरन करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। दूसरे दिन जब दोपहर को सेंटर पर पहुंचे, पूछा याद किया था, कहाँ किया था, और मेरे सामने बैठ के करो। उनके सामने बैठकर जब याद किया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। फिर वो मुझे कविता सिखाने लगी, फिर मुझे डांस सिखाने लगी। क्यों, हमारी माता जी को धुन लग गई, अब आबू जाना है। भगवान के दर्शन करने के लिए हम इतनी भक्ति किया, जब पता लग गया कि आया हुआ है तो भी यहीं बैठे रहे, कोर्स किया और उनको धुन लग गई, चलो 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 चलो। तो उन्होंने हमको कविता सिखाई, गीत सिखाया, डांस सिखाया। रोज हमको एक डेढ़ घंटे दो घंटे वो हमको पूरी ट्रेनिंग देती थी। कविता याद करा दी, मधुबन जाओगी तो बाबा को सुनाना। तो जब मैं बाबा से मिली तो मैं बाबा को कविता सुनाई कि बाबा एक कविता सुनाओ। हाँ बच्ची सुनाओ। तो कविता थी, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, साक्षात्कार हुआ। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली। कहाँ से ले गया, कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खेल उठी ये मेरी जिंदगानी, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। सुना, तो ये कविता मैंने बाबा को सुनाई। पहली बार जब हम आए, मुझे याद है लगभग 2.5 महीना रहे, लगता था जाना ही नहीं। उस टाइम मम्मा फ्रॉक पैजामा पहनती थी, साड़ी तो तब पहनी जब बाहर सेवा में निकली, तब मम्मा अपना फ्रॉक छोटा करा के मुझे पहनाया, समझा, सफेद फ्रॉक, एक नहीं 3-4 फ्रॉक रोज मम्मा का एक फ्रॉक मैं पहनती थी। यहाँ जितने दिन रही सफेद कपड़े पहनती रही। तो जब दिल्ली वापस लौटे तो हमने कहा कि नहीं हम रंगीन पहनेंगे नहीं, जिद करते थे रंगीन नहीं पहनेंगे सफेद पहनेंगे, ब्रह्मा कुमारी हूँ। किसी के घर जाएं तो पानी नहीं पिए। लोग माता जी को डांटते थे, तुम परहेज करो, ये क्यों करे, ये तो बच्ची है। लेकिन नहीं, हम समझ गए किसी के घर जाके पानी नहीं पीना है, शरबत नहीं पीना है। सारे नियम पकड़ लिए पक्के, सफेद कपड़े पहनने हैं, रंगीन नहीं पहनना है, नहीं पहनना है, कितना कोई जिद करे नहीं सफेद पहनना है, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। नशा चढ़ा रहा, और मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उसके प्रिंसिपल रोज क्लास में आते थे, वो देखते थे लड़कियों के साथ खेलते हुए, तो सेंटर में जाके रिपोर्ट कर दिया, ये ब्रह्मा कुमारी और लड़कियों के साथ क्यों खेलती है। बच्ची थी मैं, पांचवा छठा क्लास में पढ़ती थी। मुझे याद आता है कि मैं जब आठवीं क्लास में पढ़ती थी तब सेंटर पर रहना शुरू किया। प्रिंसिपल रोज आते थे सेंटर पर, हम भी रोज जाते थे, तो हमारी रिपोर्ट करते थे वहां। और लड़कियों के साथ टेबल पर बैठ के क्यों खाती है, भाई हम अपने टिफिन से खाते हैं, वो अपने टिफिन से खाती है, उसके साथ बैठ के क्यों खाती है, ये ब्रह्मा भोजन खा रही है, उसके साथ क्यों खा रही है। इतना ज्ञान था और प्रिंसिपल को। तो फिर हम ढूंढने लगे किस टाइम खाऊं, जब मैं अकेली खाऊं, कोई और आके नहीं बैठे मेरे साथ। इस तरीके से कि दीदी चंद्रमणि दीदी की बहुत पालना मिली, बहुत पालना मिली चंद्रमणि दीदी की। उन्होंने पढ़ाया लिखाया सिखाया। मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद मैंने कहा मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, मुझे यही पढ़ाई पढ़नी है, मुझे और पढ़ाई नहीं पढ़नी है, वो मेरे किस काम आएगी पढ़ाई। दीदी ने स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है। यहाँ की बहुत मोटी मोटी किताबें हैं ना काउंटर में, देखिए दीदी ने निकाल के दी, कहा जब वो पढ़ाई नहीं पढ़नी है तो ये पढ़ाई पूरी पढ़ो, चार चार घंटे बैठ के इसकी पढ़ो, और इसके वजह से भाषण तैयार करो, और हर संडे स्टेज पे भाषण करो। मैं भाषण करने लग गई, जहाँ दीदी जाती पहले मुझे ले जाती, पहले मैं भाषण करती फिर दीदी करती। उम्र मेरी 12-13 वर्ष की होगी। इस तरीके से मेरी हिम्मत बढ़ाई, हिम्मत दिलाया, आगे बढ़ाया। बस मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद फिर मेरी आगे की पढ़ाई मैंने बंद कर दी। मैं कहा नहीं, आगे मुझे नहीं पढ़ना है, जबकि दीदी चाहती थी मैं बीए तक पढ़ूं, दीदी चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद मधुबन आए, बाबा की मुरली चली, मैं बिल्कुल सामने बैठती थी, बाबा मुरली चलाते थे, मैं बिल्कुल सामने बैठती थी, डायरी पेन लेके लिखती थी। मुरली पूरी हुई, बाबा ने बुलाया, बुला के बाबा ने कहा बच्ची आज जो मुरली चली है इसको तुम भाषण की तरह लिखो, और 10 बजे बाबा के कमरे में आना लिख कर। उसके पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, यही 15 बरस की मेरी उम्र होगी। मैं एकांत में जाके बैठी, भाषण की तरह मैंने मुरली की सब पॉइंट्स लिखी थी, फिर भाषण की तरह मैंने उसको लिखा और सारी पॉइंट्स भी लिखी। 10 बजे बाबा के कमरे पहुंच गई, बाबा ने कहा लिख कर आई है, मैं कहा जी, कहा पढ़ के सुनाओ। जब मैं पढ़ने लगी 5-6 लाइन पढ़ी होगी, बाबा ने पूछा किसी से पूछ के लिखा है, मगर नहीं अकेले बैठ के लिखा, अच्छा लिखा, वरदान दिया। फिर मैं आगे पूरा पढ़ के सुनाती गई, अच्छा बोलती है, अच्छा पढ़ती, वरदान दे रहा है बाबा लिखने का बोलने का, बाबा मेरे को वरदान दे रहे हैं, अच्छा अच्छा कह के। फिर बाबा ने कहा बच्ची ये जो भाषण है ना यहाँ रख के जाओ, बाबा पढ़ेंगे। देखो सुप्रीम टीचर टीचर बनाता है ना। मैं बाबा के पास रख के चली गई। दूसरे दिन फिर मुरली चली, फिर बाबा ने बुलाया, कहा आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन फिर मैंने लिखा, लिखकर मैं फिर बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ, मैं पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा कल और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैं इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। और मैं देखती थी कि बाबा के सामने तो मम्मा भी बोलती नहीं है, मम्मा की मुरली चलती और अगर बाबा गेट पर आ गए मुरली बंद। फिर मैंने अपने मन में सोचा चलो मम्मा तो मम्मा है, मैं तो बच्ची हूं, बाबा आके सुनेंगे तो सुनेंगे। लेकिन बाबा ने जब मैंने रात्रि क्लास में मैंने वो भाषण किया, बाबा पैसेज में थोड़ा चक्कर लगा के सुना नीचे वाले हॉल के, और लास्ट में बाबा अंदर आए। एक दो दिन बीता, बाबा ने पूछा बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कह नहीं, जाओ बॉम्बे घूम के आओ। दूसरे दिन बाबा ने बॉम्बे भेज दिया, पत्र में लिख दिया प्रकाशमणि दादी थी वहां कि बाबा ने इसको भाषण सिखाया है, इसे भाषण करवाना। जहां जाओ उनको पहले से पता है कि बाबा ने इसको भाषण सिखाया है। तो मेरे को सहज हो गया, वो भाषण मैं हर जगह करती रही। क्या रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो बाबा की ज्यादा पॉइंट रक्षाबंधन से कनेक्टेड थी। बॉम्बे के सब सेंटरों पर दादी भेजती और बाबा ने भेजा था घूमने के लिए, बॉम्बे घूम के आओ। तो दादी किसी के साथ मुझे भेजती थी क्लास कराने सुबह के टाइम, और फिर जिसके साथ भेजती उनको कहती इसको उसके नजदीक जो जगह है वो दिखा के लाना, आज दूसरी जगह, आज वहां, आज वहां। इस तरीके दादी ने सब जगह क्लास भी करवाया और पूरा बॉम्बे घुमाया। बाबा का आना हो गया बॉम्बे में। बाबा के आने में भी बड़ा वंडर, बाबा का पत्र आया दादी के पास, स्टेशन पर कितने लोग आएंगे, बाबा ट्रेन से आए। दादी ने पूछा बाबा स्टेशन पर कितने लोग आए, कहा 2 या 3। अगर बाबा ये नहीं पूछते तो सारे भाई बहन पहुंच जाते, 100-200 की भीड़ हो जाती, सब फूल मालाएं और फूल लेके पहुंच जाते, 2 या 3। फिर बाबा का पत्र आया, बाबा को जहां ठहरना था, बाबा को पता लगा कि 7th फ्लोर पर बाबा को ठहरना है। तो बाबा ने पूछा जहां बाबा उतरेंगे वहां कितने लोग होंगे, फिर पूछा कितने हो, 2 या 3। फिर बाबा ने पूछा जहां बाबा लिफ्ट से उतरेंगे वहां कितने होंगे, फिर पूछा कि वहां कितने हो, का 2। तो इससे क्या हुआ, देखो हम भी वहीं थे, इससे क्या हुआ, सारे भाई बहन हॉल में बैठे हैं, बड़ा था एंट्रेंस में ही, गेट से अंदर बड़ा बड़ा हॉल था। बाबा के कहे अनुसार स्टेशन पर 2, तीन, यहाँ दो तीन, लिफ्ट के पास दो, और बाबा आकर गेट पर जब खड़े हुए सब उठकर खड़े हो गए, साइलेंस, कोई स्वागत गीत वीत कुछ नहीं बज रहा था, साइलेंस बिल्कुल। बाबा बोले सलाम अलैकुम, सबने जवाब दिया मालेकम सलाम। बड़ा बड़ा वंडर लगा, बड़ा वंडर लगा दृश्य। उसके बाद बाबा अंदर गए, एक एक को दृष्टि देते देते बाबा स्टेज पर आए, फिर बाबा की मुरली चली। इस तरह बाबा का बॉम्बे में आना हुआ। मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे बॉम्बे में दमा हो गया। डॉक्टर कहते थे यहाँ ठीक नहीं होगा, मैं बहुत दुबली पतली थी बहुत, और डॉक्टर का कहना था जो दवाई हम आपको खिला रहे हैं मोटी हो जाएगी, और दूसरा बॉम्बे में ठीक नहीं होगा। अब बाबा आए, बाबा को ये समाचार सुना दिया किसी ने, तबीयत का भी सुना दिया, वो भी सुना दिया। बाबा हालचाल रोज पूछते थे मेरे से, बच्ची कैसी तबीयत है। मैं जब बॉम्बे में रही, बाबा ने पत्र लिखा था कि बॉम्बे में रह के सेवा करो, तो दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया, एक घंटा ट्रेन से जाके वहाँ क्लास करा के फिर एक घंटा ट्रेन से आना, फिर स्टेशन से बस में सेंटर पे आना, फिर बस से जाना और आना, कितना टाइम लगता था। 1 बजे मैं निकलती थी और रात को 7-8 बजे वापस पहुँचती थी। उम्र मेरी उस टाइम कितनी थी, यही 15-16 के बीच होगी। रोज मैं जाती थी क्लास कराने, और मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे वहां दमा हो गया, लेकिन मैं दवा खाती और चली जाती, रुकती नहीं। गोली खाती 12 घंटे असर रहता, फिर गोली खाती फिर 12 घंटे असर होता, फिर 12 घंटा के बाद फिर शुरू हो जाता। डॉक्टर ने कह दिया था तुम बहुत मोटी हो जाएगी यहाँ ये गोली खाएगी तो, लेकिन तुमको इससे फायदा होगा। फायदा होता रहा, बाबा को पता पड़ा कि बॉम्बे इसके लिए ठीक नहीं है, तो एक दिन अचानक चंद्रमणि दीदी आई और बाबा ने उनके साथ मुझे 15 मिनट में रवाना कर दिया। वो पूना से आई थी बाबा से मिलने के लिए, फिर बाबा ने उनको कहा शिवरात्रि है 2 दिन के बाद, अभी तुम अमृतसर जाओ। कपड़े वपड़े लेके नहीं आई थी, कितनी आज्ञाकारी थी दादियाँ। उसी टाइम ट्रेन की टिकट आ गई, मेरी टिकट भी मंगवा दी और मेरे को उनके साथ भेज दिया। फिर बाबा ने 15 दिन के बाद मुझे आबू बुलाया, फिर बुलाकर बाबा ने कहा बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में आई, ठीक हो गया। तो देखो बाबा मन का भी ध्यान रखते, बाबा तन का भी ध्यान रखते, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, बाबा पूरा नजर रखते। एक दिन की बात है, बाबा कमरे में बैठे थे, बाबा ने मुझे कह दिया था बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। दोपहर का टाइम मैं बाबा के रूम में गई, मैंने देखा मम्मा की लौकिक माँ, वो बाबा का संदेश ही थी, बाबा कोई संदेश पूछना होता उनको भेजते। वो कोने में जो कुर्सी रखी हुई है ना बाबा के कमरे में, उस पे वो बैठी थी, बाबा जमीन पे गद्दी पे बैठे थे, वो कुर्सी पे बैठी थी। बाबा ने कोई संदेश दिया था और वो ध्यान में चली गई थी और मैं पहुंच गई। बाबा ने सामने बिठाया, पूछा बच्ची कभी ध्यान में गई हो, मैं कह नहीं। जाओगी बताओ मैं क्या कहूंगी, हाँ करूंगी ना। मैं कह जी बाबा। बाबा ने कहा बाबा भेजता है। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। कैसी दृष्टि दी, मैं कैसे सोल कॉन्शियस हो गई बिना पुरुषार्थ के। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। कब तक बाबा का हाथ मेरे सिर पर रहा मुझे नहीं पता, पर मैं वतन में पहुंच गई, ध्यान में चली गई। मैं ऊपर के क्या क्या नजारे देख रही हूं, वंडरफुल। शायद वो देखने में ज्यादा टाइम लगा। फिर बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची नीचे आओ, नीचे आओ। तो जब मैं नीचे आई क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पे था, जो आज भी अनुभव होता है कि सिर पर है। मेरी आंखें खुली, बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, बाबा का हाथ सिर पर रहा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे नशे में जाती रहोगी, वरदान दे दिया। इस तरीके से मीठे बाबा ने अनेक मीठे मीठे वरदान दिए, सेवा के क्षेत्र में भी भेजा, बच्ची वहां जाओ, वहां सेवा करो, ये करो। इस तरह से मीठे बाबा के मीठे मीठे वरदानों से बाबा झोली भरते रहे, और बहुत बहुत मीठी पालना बाबा की मिली। बाबा ने मुझे ईस्टर्न जोन में भेजा, मेरा दमा ठीक हो गया, जो बॉम्बे में दमा हो गया था वहां के ठीक हो गया। बाबा को ये भी पता चला कि ठीक हो गया है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने तन का भी ध्यान रखा, मन का भी ध्यान रखा, और हम कहां सेवा पर हैं, क्या कर रहे हैं, बाबा समाचार लेते रहते थे, क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। बाबा ने ईस्टर्न जोन में भेजा था दीदी निर्मल शांता दीदी के पास, मैं दीदी के पास 2 बरस रही। फिर संदेशी दादी ने बुलाया, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, आओ। वहां कुमार बहुत थे, कोई ना कोई कारण से डिस्टरबेंस होती रहती थी, इसलिए संदेशी दादी सेंटर छोड़ नहीं सकती थी। मेरे को बुलाया, प्रदर्शनी हुई, शिविर हुआ, 20-25 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, देखा कोई डिस्टरबेंस हुई नहीं। को कहती मैं तो कई कुछ ठीक करती रहती थी, जब से तुम आई हो कोई डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। हम हर एक से बातचीत करने में इतने इजी तो थे नहीं। इस तरीके से कई प्रोग्राम किए, धीरे धीरे जब उनको लगा, अब वो पकड़ ली मेरे को कि अब तुमको जाने नहीं देंगे, अब तुमको जाने नहीं देंगे, तुम्हारे आने से यहां की समस्या खत्म हो गई। उसके बाद वो और हम एक बार कलकत्ता गए, दीदी ने उनको भुवनेश्वर भेज दिया, मेरे को मुजफ्फरपुर भेज दिया। समझ गए, इस तरीके से बाबा जहां बिठाए वहां सेवा कराने वाला कौन, बाबा। जब उस मकान में हम बैठे थे, किराए का मकान था, एक दिन मकान मालिक आ गया कि हमें इसे बेचना है, आप खाली कर दीजिए। मैंने कहा हम खरीद लेंगे। कहा नहीं, आपने इसे बहुत खर्चा किया है, बहुत रिपेयरिंग कराई है, बहुत कुछ किया है इसमें। मैंने कहा जितना कोई देगा उतना हम भी दे देंगे, दाम लगाइए ना। हमने मकान खरीद लिया। खरीदने के बाद हमारे मधुबन से एक भाई आया, बैठ के नक्शा बनाया। मैं क्या कर रहे हो, नक्शा बना रहे हैं, काहे का नक्शा, तो ये मकान ऐसे ही थोड़ी रहेगा, ये तो खरीदा है तो नया बनेगा, बस उसके नक्शा बनने बनाने के बाद तो बनना शुरू हो गया। एक कमरे में हम रहते थे, आगे का पूरा तोड़ फोड़ दिया, कमाल है। तब अनुभव होता है, पैसा नहीं था हमारे पास, प्लान भी नहीं था कि बनाना है, ये भी नहीं था, फिर बनता कैसे गया? बनता गया। रोज क्लास खत्म होती, कोई ना कोई माता जी आके पूछती, कोई सामान मंगाना है? मैं क्या बोल रहे हैं, इतना सीमेंट चाहिए, अच्छा तो हम भिजवा देंगे। दूसरी आके कुछ और पूछती, तीसरी आके, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि तुम कि आप क्या करोगे, क्या खर्चा करोगे। अपने आप मेरे से पूछ पूछ के सामान बेचती रहती, सामान बेचती रहती। तो हर जगह हमने क्या देखा, बाबा की कमाल। मकान बन के तैयार हो गया, फिर वो मधुबन में आया भाई जो नक्शा बनाने वाला, दादी को आके बोला कि रानी बहन ने तो शुरू कर दिया मकान, यहाँ बारिश नहीं हुई थी, कंस्ट्रक्शन बंद था, तो दादी से पूछ के चार मिस्त्री आबू से भेज दिए, और वो मिस्त्री थे तो बिहार के ही, बहुत इंटरेस्ट से बनाया उन्होंने। वो रात 10 बजे तक काम बंद ही नहीं करते थे। मुझे लगता है 8-9 महीने के अंदर 2 तल्ला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। समझ गए? तो ना कभी किसी बात के लिए सोचना पड़ा, करेगा कौन, धन कहाँ से आएगा, ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम खाली देख रहे हैं। अभी भी बड़ी जमीन ली है, सब काम हो रहा है, हम यहां बैठे हैं, सब काम हो रहा है। बस बाबा कहता है, बाबा को खाली देखते जाओ, बाकी सब बाबा करेगा। बार बार बाबा से मांगना भी तो नहीं है ना, हम मांगते भी नहीं है, बाबा अपने आप कर रहा है और हमारे में हिम्मत बढ़ा रहा है, शक्ति बढ़ा रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो अभी ईस्टर्न जोन में है, अभी जहां है वहां 50 वर्ष हो गया रहते हुए, पूरे बिहार में सेंटर्स नहीं थे। हम मुजफ्फरपुर में जब रहे, एक भाई आया विदेश से, कहा बिहार का नक्शा देखा है? मैं कहा नहीं। नक्शा ले आया, कहा देखिए इसमें कितने जिले हैं बिहार में, कितने में सेंटर नहीं है, सब गिनती करके उसने दिखा दिया, 12-14 जगह सेंटर नहीं है जिलों में। फिर मेरे को बोला कब तक खोलेंगे? मैं कहा सेंटर को जल्दी थोड़ी खुलते हैं। कहा नहीं नहीं हर महीने एक जिले में सेंटर खुल जाएगा, हर महीने। कैसे खुल जाएगा? उसने ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप बना दिया, पहले सेंटर का मकान ढूंढो हर जगह, पहले सेंटर का मकान खोज लिया, दूसरे ग्रुप को बना दिया, उसके नजदीक प्रदर्शनी की जगह ढूंढो। तीसरा ग्रुप को बनाया, धर्मशाला उसके नजदीक ढूंढो जाके, जहां सब रहेंगे जाके। अपने आप सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ गए? 12 महीने से पहले ही 12-14 जिलों में सेंटर खुल गए। ये नहीं बहुत खर्चा करना पड़ा, जहां सेंटर खुले वहीं के लोग तैयार। मैंने कहा भोग के बर्तन पहले हम चाहिए, सेंटर खुलेगा पहले भोग, बाबा को पहले भोग लगाएंगे। हमने कहा भोग के बर्तन, वो माता जी ले आई पूरे किचन के बर्तन, कहती है भोग बनेगा तब ना भोग लगाइएगा, बिना भोग बने कैसे भोग लगाइएगा। वो पूरे भोग के बड़े बड़े टोपिया, बड़ी बड़ी कढ़ाई, बड़े बड़े बर्तन भी ले आई और भोग लगाने वाले बर्तन भी ले आई। मैं तो खाली भोग की थाली उसी के लिए बोला था, उसमें 4 डब्बी लुटिया, मैं तो उसी के लिए बोला, और वो बोली कि बनेगा नहीं तो इसमें पड़ेगा कैसे। उसने अच्छा बेहद का सोचा। मैं अभी उतना नहीं सोचा था, लेकिन हर जगह बाबा का जादू देखते रहे, करामात देखते रहे, समझ गए। बस सब जगह सेंटर्स खुल गए, कहीं हमको खर्चा नहीं करना पड़ा, वहीं के लोग तैयार। पूछे सेंटर खुलेगा तो पहले क्या करना है, मैं कहा पहले साल भर का किराया देना है। तो एक भाई तैयार हो गया, मैं साल भर किराया दूंगा, दूसरा भाई दूसरा आइटम के लिए तैयार हो गया, तीसरा, कमाल है। सब कार्य होते चले गए। फिर मैंने गुलजार दादी को लिस्ट दिखाई और लिस्ट के ऊपर लिखा बिहार में आए बाहर। गुलजार दादी ने पढ़ा, कहा इसको ठीक करो, लिखो बिहार में आई बाहर, आए बाहर नहीं लिखो। बिहार में आई बाहर। तो दादी ने ठीक करवाया, ऐसा वरदान दिया जो सेंटर खुलते चले गए। बहनें भी, छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े सेंटर संभालती गई। टाटा नगर तक सेंटर खुल गए। झारखंड में भी सेंटर खुल गए। इस तरह से मीठे बाबा बच्चों को आगे तो जरूर कर दिया है, लेकिन पूरी कारोबार बाबा चला रहा है। वो कमाल बाबा की हम देखते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 6 वर्ष की उम्र से बाबा के बने, 12 वर्ष की उम्र से सेंटर पर रहना शुरू किया, आज कहाँ पहुंच गए। हाँ, 75 हो गई। समझ गए। पहली बार जब हम मधुबन आए थे, जब मैं 6 वर्ष की थी, ये पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस में आए थे। तब हम 2.5 महीना रहे कोटा हाउस में, ज्यादा रहने की जगह नहीं थी। कोटा हाउस से सटे हुए ढोलपुर हाउस है। हाँ, तो हम लोग ढोलपुर हाउस में रहे थे। हमारी माता जी सवेरे चली जाती थी टाइम पे योग करने, क्लास करने, हम बहुत छोटे थे। तो बाबा मुरली पूरी होते ही गेट पे आ जाते, घुमाने ले जाते। तो बस एक बहन की ड्यूटी लगा दी थी, वो आके मेरे को उठा के ले जाती और बाबा के साथ मिला देती। घुमाने रोज आना, बाबा का हाथ पकड़ कर रोज घूमने जाते। आबू की सब पहाड़ियों पे बाबा के साथ चढ़े, देखो। इस तरीके से मीठे बाबा ने अनेक वरदान दिए, सब कुछ सहज करते गए। आज भी सब सहज कर रहे हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद, चिंता विंता नहीं करो कोई बात की, सिर्फ मेरे को याद करो, बस मैं बैठा हूं। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये सब भाई बहन कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा अच्छा अलग अलग जगह। मम्मा तो बहुत मीठी मम्मा। मम्मा ने मेरे को सफेद फ्रॉक पहनाने में बहुत मेरा इंटरेस्ट जगाया। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी हो, सफेद पहनो। और सौभाग्य मिला, मम्मा का फ्रॉक पहनने का सौभाग्य मिला तो वो भी मैं बहुत छोटी थी, मम्मा के साई का फ्रॉक एक दर्जी थे उस छोटा करके मेरे को पहनाते रहे। इस तरीके से मम्मा एक बार दिल्ली में आई, दिल्ली में मम्मा काफी दिन रही और जहाँ मम्मा रही वो हमारे लौकिक संबंधियों का भवन था, बहुत बड़ा भवन था। तो जब तक मम्मा रही हम भी उसी भवन में रहे, जब तक मम्मा रही हम भी वहीं रहे, और मम्मा की बहुत बहुत मीठी पालना मिली, बहुत मीठी पालना मिली। मम्मा जब एरोड्रोम पे उतरी, फ्लाइट से आई थी, पहले शायद कानपुर गई थी, कानपुर से दिल्ली आई, मम्मा जब फ्लाइट से आई थी तो मैं समझती हूँ 400-500 से कम लोग नहीं होंगे रिसीव करने गए, इतनी भीड़ थी, इतने भाई बहन थे और इतनी बड़ी चादर, इतनी बड़ी चादर पकड़ी हुई और उसको फूलों से भरा हुआ, उसमें से फूल उठा उठा के सब कितने ड्राई फ्रूट की मालाएं पहन बनाई हुई, कोई किसी चीज की मालाएं बनाई, बैठ बैठ के इन्होंने कितनी मालाएं बनाई, फिर फूलों की इतनी मालाएं मम्मा को पहनाई, इतना मम्मा का स्वागत किया, इतना स्वागत किया, बात मत पूछो। बाबा कहते भी थे जहाँ मम्मा जाए बहुत मम्मा का स्वागत करो और बाबा जहाँ जाए बाबा को तो शिव बाबा को ही दिखाना है ना, तो ये और लोग तो जानेंगे नहीं शिव बाबा इनमें है ऐसे मम्मा का बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जहाँ जब एरोड्रोम पर, मैं पहले मधुबन से हो आई थी उसके बाद मम्मा निकली थी सेवा में, तो जब मम्मा गाड़ी में बैठने लगी मैं सामने दिखाई दी, मम्मा मेरा हाथ पकड़ कर ले आई अपने साथ गाड़ी में बिठाया मम्मा ने, और जहाँ वो भवन था उससे काफी आगे से स्वागत शुरू था, कितने ग्रुप थे, अलग अलग तरह की मालाएं, अलग अलग तरीके के गुलदस्ते, अलग अलग तरीके का स्वागत, कई ड्राई फ्रूट की मालाएं, कई फलों की मालाएं, वंडरफुल। तो जहां मम्मा को उतारा तो हम मम्मा के साथ थे, इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, कोई पूरा ग्रुप मुकुट पहने हुए मम्मा को ताज पहनाया फूलों का, कोई फूलों के हार पहना रहे हैं, आगे देखते हैं तो ड्राई फ्रूट के हार पहना रहे हैं, आगे देखते हैं कुछ और, इतना वैरायटी, इतनी वैरायटी। एक ग्रुप पूरा हुआ, दूसरा ग्रुप नया डिजाइन, तीसरा ग्रुप नया डिजाइन, चौथा ग्रुप नया समझा, ऐसा स्वागत। और वहां मम्मा रही दो तीन महीने रही होगी, और ऊपर छत पे बहुत बड़ा भवन था, बहुत छत पे पंडाल बना हुआ था, और उस समय तो इतनी सेवाएं नहीं थी, इतना खर्चा करने वाले भाई बहन भी नहीं थे, और वो जो हमारे संबंधी थे बहुत शौकार थे पूरे भवन में बहनों को ठहराया, पूरा हॉल जो मम्मा को दिया था कमरा, बड़ा कमरा था, अच्छा बहुत सुंदर बना के दिया, और किसी को भी सब बहनों को सौगात देना है, ये उनका स्टोर भरा हुआ, पूरा भंडारा भरा हुआ इतने जितने आए दिन भर में सब भोजन करें, इतना भोजन बनवाते, जो भोजन करते हैं उनकी जूठी थालियां भी जा जाके उठाते, समझा, इतने प्यार से, इतनी प्यार से सेवा करने वाले, वो दृश्य हमने इन आंखों से देखा, हम तो उसी भवन में रहे। समझा? इस प्रकार से मीठी मम्मा की बहुत मीठी पालना दिल्ली वालों को मिली, दिल्ली वालों को मिली। हर रोज सब पहुँचते, छत पे पंडाल लगाया था तो मम्मा वहाँ मुरली चलाती, पूरा पंडाल दूर तक भरा रहता, इतने सभी भाई बहन पहुँच जाते। इस तरीके मम्मा ने बहुत बच्चों की पालना की, बहुत दिल्ली वालों की बहुत पालना की। मम्मा यूपी में गई, लखनऊ गई, कानपुर गई, फिर दिल्ली आई। इस तरीके से मम्मा की बहुत मीठी पालना मिली, सभी ने की, मम्मा का स्वागत बहुत बहुत ऐसा किया जो वंडरफुल। क्योंकि मम्मा के आने से पहले मैं रोज देखती थी बहनें बैठ के मालाएं बना रही है ड्राई फ्रूट की, इतना नहीं पता था कि सब मम्मा को पहनाएंगी। बहुत मालाएं बैठ बैठ के बनाती थी, नया नया डिजाइन की बनाती थी, रोज बनाती रहती, रोज बनाती रहती। सो बाबा भी कहते थे मम्मा आए तो बहुत स्वागत करो, बहुत, ऐसा किसी का ना हुआ हो ऐसा स्वागत करो। ठीक है, चलो, ओम शांति।